ओम शांति। आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और अच्छा है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। देखिए, आज हम कोई भी चीज प्रूफ करते हैं तो उसके लिए आंखों से देखकर और बुद्धि से समझ करके ही हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जैसा कि हमने कोर्स के दौरान भी बताया कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही ज्योति स्वरूप हैं और आत्मा एक एनर्जी है और एनर्जी का जो स्वरूप होता है वो बिंदु रूप में होता है, एक अणु के रूप में होता है। जो सूक्ष्मातः सूक्ष्म कण जो अणु हैं, अगर ऊर्जा का विश्लेषण हम करते हैं तो ऊर्जा का जो सूक्ष्मातः सूक्ष्म कण है वो अणु है। अणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो ये सूक्ष्मातः सूक्ष्म कण है एनर्जी का। ये हमने भौतिक एनर्जी को तो जान लिया, लेकिन जो इटर्नल एनर्जी है जिसको कि हम अविनाशी सत्ता कहते हैं, वो आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए ही सेम वर्ड यूज किया है। लेकिन परमात्मा भी आत्मा है, वो सुप्रीम सोल है, वो भी सोल है लेकिन सुप्रीम सोल है। तो जो आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, प्रकाश का जो स्वरूप होता है वो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में होता है। ये हम जो भौतिक ऊर्जा है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा भी एक ऊर्जा है। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कोई शक्ति चलाती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, जो एनर्जी है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देती क्योंकि चर्म की वो बनी नहीं है, पांच तत्वों की वो बनी नहीं है, और जो चीज जिससे मिलके बनी होती है वो उसी के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी के द्वारा उसको पहचाना जाता है, उसकी पूर्ति भी उसके द्वारा की जाती है, तो एनर्जी के रूप में। दूसरी बात है कि भक्ति मार्ग ले ले आज हम, अनेक आत्माओं ने परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया, उसके पश्चात ही हमको ये शास्त्र जो क्या है, शास्त्र पूर्व में जो ऋषि मुनि या श्रेष्ठ आत्माएं थी उनके द्वारा हुआ जो साक्षात्कार था उसका आधार पर उन्होंने वो लिखे शास्त्र, और जिसमें कि परमात्मा को उन्होंने ज्योति स्वरूप माना। इसलिए सभी धर्म ग्रंथों में गॉड इज लाइट कहा, किसी ने हिंदू धर्म में हम ज्योति के रूप में याद करते आ रहे हैं, दीपक जलाते हैं, संध्या करते हैं तो शाम को प्रकाश को नमन करते हैं, और परमात्मा को ज्योति स्वरूप जिसको हम शिवलिंग आज हम जो बनाते हैं वो क्या है, हम उसको क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का स्वरूप, प्रकाश का चिन्ह, ए सिंबल ऑफ लाइट। क्योंकि पूर्व में परमात्मा ने साक्षात्कार भी कराए हैं, क्योंकि जिन आत्माओं को ज्योति का, जैसे गौतम बुद्ध को ज्योति का साक्षात्कार हुआ लुम्बिनी में, है ना, इसलिए परमात्मा को कई लोगों ने कह दिया कोटों सूर्यों से भी तेजोमय है, शक्तिशाली है, प्रकाशमान है। तो बिना देखे कोई भी बिलीव नहीं करता है, बिना देखे कोई भी बात कही नहीं जाती है। और आज अगर वर्तमान में हम देखें तो आज भी अनेक आत्माओं ने, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर अनेक आत्माओं ने साक्षात्कार द्वारा परमात्मा के ज्योति स्वरूप को देखा है, दिखाया है उनको। और मेरे भी संपर्क में एक दो आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रकाश स्वरूप को देखा, मैंने तो नहीं देखा लेकिन उन्हों का एक्सपीरियंस है। एक छोटा बच्चा था जो कहता था मुझे ज्योति दिखाई देती है, मेरा रिलेशन में वो भतीजा है, भतीजी है मेरी, तो उसको रिलेशन में उसको दिखाई देता था जब वो 6-7 साल की थी। तो और भी अनेक बहुत उदाहरण मिलते हैं परमात्मा के ज्योति स्वरूप के, निराकार के। क्योंकि एनर्जी हमेशा अपने को रिफ्लेक्ट करती है, अपने को प्रूव करती है, और जहां भी वो जिस माध्यम में भी जाती है। अब मनुष्य के अंदर आत्मा है, तो इस शरीर रूपी जो मशीन है, जो यंत्र है, जो रथ है, इसको चलाने वाली जो रथी आत्मा है वो एक एनर्जी है। उसको हम एनर्जी कहें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया है। तो परमात्मा का ज्योति स्वरूप है, वो देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, इसलिए सब बातें कही जाती हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और अच्छा है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। देखिए, आज हम कोई भी चीज प्रूफ करते हैं तो उसके लिए आंखों से देखकर और बुद्धि से समझ करके ही हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जैसा कि हमने कोर्स के दौरान भी बताया कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही ज्योति स्वरूप हैं, और आत्मा एक एनर्जी है, और एनर्जी का जो स्वरूप होता है वो बिंदु रूप में होता है, एक अणु के रूप में होता है। जो सूक्ष्मातः सूक्ष्म कण जो अणु हैं, अगर ऊर्जा का विश्लेषण ओम शांति। आपका प्रश्न
ओम शांति। देखिए, जो भी हिंदू धर्म में जो मान्यता है कि शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा के लिए पूजा पाठ किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, इसके लिए यही है कि आत्मा शरीर छोड़ने के कई बार 24 आवर के अंदर ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है जहां उसका नेक्स्ट बर्थ होना होता है, और मैक्सिमम वो 12 दिन तक, 12-13 दिन तक, जो 13 भी कहते हैं, तब तक वो आत्मा हमारे आसपास भी रह सकती है। ये डिपेंड करता है कि आत्मा किस स्थिति में शरीर छोड़ा है। अगर उसने पूरा शरीर लेकर के मैक्सिमम आयु के बाद में 80-70-80-90 के बाद में शरीर छोड़ा है और इजी वे में छोड़ा है, तो वो आत्मा ज्यादा परेशान नहीं होती, ज्यादा दिन रुकती नहीं है और वो डायरेक्ट दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर अंतिम समय पर आत्मा को शरीर छोड़ते समय अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मोह है, तो वो आत्मा अपने परिवारजनों के पास कुछ दिन तक रहती है, जिसको कि हम 12-13-13 भी मनाते हैं, तब तक वो आत्मा हमारे आसपास रहती है और हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो देखती है, बट कह नहीं सकती है और ना ही हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के शरीर के साथ वो बॉडी में से निकलती है। इसके लिए यही है कि जो उनकी पूजा पाठ की जाती है उनकी शांति के लिए, तो जब शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है तो वो एक विधि है। इसके द्वारा, इस विधि के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी मानसिक एनर्जी छिपी हुई है, हमारे मन के अंदर एक भावना छिपी हुई है और उन संकल्पों को वो आत्मा रिसीव करती है, तो उसको खुशी होती है अगर वो प्रेजेंट है उस दौरान 12-13वें दिन तक अगर वो है, तो उसको खुशी होती है और फिर वो चली जाती है दूसरे शरीर में। लेकिन उसके बाद में अगर आप उनके नाम से कुछ करते हैं या हर साल कुछ श्राद्ध मनाते हैं तो वो आत्मा को पता नहीं होता है। आप अपनी भावना के हिसाब से कुछ भी करें, किसी को कुछ भी लेन देन करें, वो आपका कार्मिक अकाउंट है, वो आपका अपना लेन देन का है हिसाब किताब, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बाकी उस आत्मा को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और ना ही उसके प्रति ऐसा कुछ उसको कोई लाभ होने वाला होता उससे। तो हम जो कुछ भी करते हैं जीवित व्यक्ति के साथ जितना करते हैं वो उसको डायरेक्ट अप्रोच होता है, और मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद में उस आत्मा के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो लाभकारी नहीं होता है। अगर उसी वक्त आप कुछ करते हैं, अगर वो आत्मा ने शरीर नहीं लिया है 12 दिन से पहले, तो वो आत्मा देखती है और वो खुशी होती है उसको, बाकी उसके आधार पर उसको कोई पुण्य या लाभ वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये इस कर्म का सिद्धांत है। जब तक आत्मा शरीर में है, चाहे कोई भी है, तो वो आत्मा शरीर में रहते हुए जो भी अपने हाथ से पुण्य दान करती है, कुछ भी करती है, अच्छे बुरे कर्म, उसका ही उसको लाभ होता है, अन्यथा उसके बाद उसको नेक्स्ट बर्थ में उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे नेक्स्ट ही 31 मार्च तक आपने जो कुछ लेन देन किया वो 31 मार्च तक था, नेक्स्ट ईयर शुरू होते ही वो दूसरे साल में अकाउंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये नेचुरल लॉ है। और इस पहले ऐसा होता था कि जिस ब्राह्मण के तन में कई बार आत्मा को कॉल किया जाता था, पहले शक्ति होती थी, आत्मशक्ति होती थी, तो वो आत्मा चाहे बच्चे के रूप में कहीं भी है और वो कुछ समय के लिए आ जाती थी और वो अपने भाव एक्सप्रेस करती थी, तो उसको खिलाया भी जाता था, जिसके लिए कि श्राद्ध मनाते हैं हम, वो होता था, प्रक्रिया होती थी पहले। लेकिन अब वो किसी भी आत्मा में शक्तियां नहीं है लौकिक रीति में दुनिया के अंदर, और वो ऐसा नहीं होता है। कहीं यदा कदा कहीं होता होगा तो बहुत ही आत्माएं, ऐसी विशेष आत्माएं जो कि जिनके अंदर थोड़ी पावर है, वो ऐसा करते होंगे, बाकी ये ना के बराबर है, इसको हम जज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से है। और उनके जाने के बाद कोई भी दान पुण्य करना, उस वक्त आप 12-13 दिन के अंदर करेंगे तो फिर भी कुछ उनको खुशी होगी, क्योंकि वो आसपास होते हैं, और उसके बाद तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार से है। ओम शांति। ये हो गया डिलीट। ओम शांति। देखिए, शरीर छोड़ने के पश्चात कोई भी आत्मा दूसरे शरीर में उसको जाना होता है, उसकी जो यात्रा है जीवन की, उसमें उसका यहाँ का जो वर्तमान पड़ाव था वो खत्म हुआ, नेक्स्ट बर्थ में उसको जाना होता है। इसलिए वो आत्मा कोई न कोई रीजन बनता है, कोई भी घटना होती है कारण बनता है और वो शरीर छोड़ के जाती है। तो जो आत्मा लगभग ओम शांति ओम शांति ओम क्या हो रहा है, ओम शांति, ओम शांति। Mm-hmm.